को ईश्वरीय प्रसाद समझकर स्वीकार करना और प्रेम से स्वीकार करना। यज्ञ में बेगरी पार्ट था, हमारी दादियों ने जो कुछ भी सहन किया। दादी जानकी का ही सबसे बड़ा उदाहरण है। 74 में जब दादी गए विदेश और कुछ साल रहकर आए, जो साड़ी पहन कर गए थी दादी वही साड़ी थी, इतना अभाव था वहां पर, हर चीज का अभाव। और वास्तव में साधना भी अभाव में ही जो होती है वो बहुत तीव्र होती है। जब बहुत सारे साधन है वहां साधना न चाहते हुए भी स्वतः ही कम हो जाती है। इसके लिए जो भी हमें मिल रहा है धन्यवाद देकर परमात्मा याद में उस भोजन को स्वीकार करना। एक दिन सब कुछ है, एक दिन कुछ भी नहीं है, हमारी स्थिति सेम रहे। जैसे वो उदाहरण दिखाते हैं दो साधुओं का, कि दो साधुओं की झोपड़ी गांव में थी। एक गांव में इतना जोर से आंधी तूफान आया कि आधी झोपड़ी तो पूरी उड़ गई, नष्ट हो गई। एक साधु जब शाम को लौट के आता है और देखता है कि ये क्या, गांव में कितने चोर और गांव में कितने झूठे लोग हैं, चोर है, उन सब के घर ठीक है और हमारा ही घर तूने उजाड़ दिया। हम ही मिले तुझे जो तुझे दिन रात याद करते हैं, तेरे लिए संन्यास लिया, तूने इतना भी नहीं बचाया हमारी, कम से कम झोपड़ी तो बचाना था। कंप्लेंट्स। कुछ समय के बाद दूसरा साधु आता है और झूमने लगता है और गाने लगता है और धन्यवाद देने लगता है कि हे प्रभु, इतनी आंधी और इतनी तूफान में भी तूने आधी झोपड़ी रखी, कितना ध्यान है तुझे हमारा। मन की स्थिति देखो दोनों की कैसी है। वैसे ही यज्ञ का भी ऐसा ही एक उदाहरण है। दो भाई बहुत सेवा की दिन भर, बहुत पुराना उदाहरण है, दिन भर सेवा की, रात में पहुंचे भंडारे, भंडारा में तो देखा सब्जी नहीं है, रोटियां टुकड़े टुकड़े जो बचे हुई रोटियां थी बस वो टुकड़े थी। तो पहला जो सेवाधारी था इतना क्रोध से भर गया, पहले तो सारे दिन भर सेवा करो और उसमें भी कुछ भी नहीं बचा है, ये भी क्या है, क्या यही इसके लिए मधुबन में आते हैं कि हम लोग सेवा करने, कम से कम खाने को तो कम से कम ठीक मिलना चाहिए बाबा, कम से कम इतना तो देखो कि हम जब यहां आते हैं अपने घर से आते हैं, इतना पूरा छुट्टी लेकर आते हैं, उधर से सारा छोड़कर आते हैं और ये खाने को कुछ नहीं, थाली पटक कर चला जाता है, देखता हूं अभी कल का टिकट अगर मिलता है तो वापस, बहुत हो गया इधर, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, उधर ही सेवा ठीक है। दूसरा भी भाई आता है, दोनों ने सेवा की है और दूसरा देखता है कुछ भी नहीं है, पहले तो बहुत धन्यवाद देता है बाबा को कि जहां सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद भी रोटियों के ये टुकड़े रखे, वो भी तोड़कर रखे मेरे लिए केवल रोटी नहीं, वो भी तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड शुड बी ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव है। जो भी मिल रहा है ईश्वरीय प्रसाद है, प्रभु कृपा है। दुनिया वालों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, देखो यहां की झोपड़ियों में जाकर, ज्ञान की तो बात छोड़ो, जीवन की जो दैनंदिक आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं हो रही है उनकी। हमारा भाग्य कितना है, हमें सब कुछ मिला है, उसके लिए कभी हमने धन्यवाद दिया, बहुत कम। उठते ही सबसे पहले तो धन्यवाद भी देना है भगवान को कि तुमने जो कुछ दिया है उसके लिए धन्यवाद। अहोभाव जिसको हिंदी में कहा जाता है, ऐसे अहोभाव से, ऐसे धन्यवाद के भाव से, कृतज्ञता के भाव से स्वयं को भरना है। क्योंकि बात कृतज्ञता की आई, दो मिनट के लिए, तीन मिनट के लिए सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे, एक गीत बजेगा, धन्यवाद का गीत, जो कल बजाया था धीरज भाई योग के पहले, नया गीत जो है, तो स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित करना और बाबा ने हम पर क्या क्या उपकार किए हैं सारा याद करो। यदि वो हमको हमारे जीवन में नहीं मिलता तो आज हम कहां होते। हमको याद है एक बार हम नकी घूम रहे थे तो अचानक एक मरीज मिल गया, पेशेंट हमारा कोई पुराना, हम तो भूल गए थे बहुत पहले। वो अचानक आके कहने लगा, डॉक्टर साहब पहचाना क्या? तो हमें याद नहीं आया, बहुत पुराना कोई मरीज था। उसने कहा हमारी माँ वहां पर हॉस्पिटल में भर्ती थी और वो बहुत सीरियस थी, वेंटिलेटर पे थी, फिर वो बच गए, फिर आपने उसको जीवन दे दिया और आप नहीं होते तो मेरी माँ नहीं बचती। उसने ऐसा वाक्य हमसे कहा। उतना कहे कि हमने भी कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मतलब हमको तो याद ही नहीं आया वो कौन है, इतना पुरानी बात थी वो, और वो चला गया। अब उसने जो बात कही कि आप नहीं होते तो मेरी मां नहीं बचती, अब हमारा चिंतन चालू हुआ, बाबा यदि तुम ना होते तो मैं कहां होता। और वो नकी घूमते घूमते ऐसे, जब मुझे लगता है लगभग 50 पॉइंट्स निकल गए होंगे। तो उसी स्वरूप में स्थित होना है। मुझको इतना सम्मान दिया बीच में है ना इसमें, तो फिर से आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना और बाबा ने हम पर क्या क्या उपकार किए हैं, क्या क्या दिया है, स्थूल में भी जो कुछ दिया है, सूक्ष्म में तो बहुत कुछ दिया है, उन सभी के लिए एक बार दिल से बाबा को थैंक्स धन्यवाद देना। हमेशा क्या कंप्लेंट ही करते रहोगे? भक्ति में एक भगवान मंदिर का अपने भक्तों से कहता है कि हमेशा ही मांगने के लिए आते हो, कभी मिलने के लिए भी आया करो। तो हम चले अभी शिव बाबा से मिलने और उसको दिल से, हृदय की गहराई से, प्राणों के अंतस से उसको धन्यवाद दे।
जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। अब पैर जमीन पे नहीं रहते जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे
ईश्वरीय प्रेम में आंखों से आंसू आ जाना, अशरीरी बनने की विधि है। इतना कृतज्ञता से भर जाए हृदय कि उसके अतिरिक्त संसार में सब कुछ व्यर्थ दिखाई देने लगे। कोई इंसान हमारी क्या मदद करेगा, कोई मनुष्य हमें क्या दे सकेगा। जो वो दे सकता है कोई नहीं दे सकता। सब देख लिया, सबको जान लिया। जो कुछ प्राप्ति होनी है एक ही से होगी। एक का बनने में ही सर्व प्राप्तियां है। ये जो भाव है बहुत गहराई से अपने हृदय में उतारना है और रोज उसने हमें क्या क्या दिया उसको मन ही मन रिवाइज करना है। जिन्होंने एक बार भी अभी तक ये लिस्ट नहीं बनाई है वो इसे सबसे पहले तो बनाएं कि हमें भाग्य क्या क्या मिला है, प्राप्तियां क्या क्या हुई है, नशे कौन कौन से हैं और भगवान ने क्या क्या दिया है। आज तक हो सकता है हमने उसे अब तक धन्यवाद ही नहीं किया, हम भूल ही गए। सबसे पहले तो उसे धन्यवाद, इसके पहले कि उसको कोई दूसरी अपनी जीवन की कंप्लेंट बताओ, पहले जो दिया है उसके लिए तो धन्यवाद करो। कि हमेशा कंप्लेंट ही करते रहोगे, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ये सेंटर अच्छा नहीं है, वो सेंटर अच्छा नहीं है, ये स्थान अच्छा नहीं है, वो स्थान अच्छा नहीं है। जो भी उसने दिया है वो बेस्ट है। जो स्थान, जो परिवार, जो सेंटर, जो बहन, सब कुछ, उससे अधिक अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। 10 ऑप्शंस थे, उसमें से ये वाला चुना गया है क्योंकि बाबा को लगा कि ये बेस्ट है आपके लिए। और भी परिवार थे जहां आप जन्म ले सकते थे, पर बाबा को लगा ये परिवार सबसे अच्छा है। और भी पत्नियां थी और भी पति बन सकते थे दूसरे, और भी बच्चे थे और बच्चियां थी, पर बाबा को लगा यही बेस्ट है। जहां हम हैं, जिस घर में हैं, जिन लोगों के बीच में हैं, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ही कमल खिलता है। कमल कहां खिलता है, अच्छे पानी में थोड़ी खिलता है जहां कीचड़ होगा। संपन्न जो बनने जाता है वो कोई अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न नहीं बनना होता है, हमें संपूर्ण प्रतिकूल परिस्थितियों में बनना है। उसी में तो कमाल है। सब कुछ मिल रहा है और महान बन गए, इसमें कोई महानता नहीं है। किसी भी सम्राट का जीवन देखो, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, सम्राट विक्रमादित्य, कोई भी सम्राट ले लो, बचपन से ही जीवन में द्वंद द्वंद द्वंद। पृथ्वीराज चौहान, हरेक का जीवन देखो द्वंद से भरा हुआ है और उसी के आधार से ये लोग महान बने। तो जितना ही ये सारी परिस्थितियां होगी ये तो अच्छा है, ये हमारा पोषण कर रही है, इन्हीं के बीच हमें संपूर्ण बनना है, तो उनके प्रति नो कंप्लेंट। पहला तो इसको जीवन का नियम बना लो कि आज के बाद न व्यक्ति के प्रति, न परिस्थिति की, न स्थान की कंप्लेंट नहीं करेंगे। न स्थान बदलेगा, न व्यक्ति बदलेंगे, न परिस्थिति बदलेगी। अव्यक्त महावाक्य है, तुम्हें ही बदलना होगा। व्यक्ति जो है वही रहेंगे, स्थान जो है वही रहेगा, परिस्थिति जो है वही रहेगी। तुम बदल जाओ तो वो बदल जाएगा। एक दूसरे अर्थों में भी इस वाक्य को लिया जा सकता है, स्थान बदल जाए, व्यक्ति बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए, पर तुम ना बदलना, तुम अचल अडोल रहना, वो एक दूसरे अर्थों में। तो नो कंप्लेंट्स, किसी के प्रति भी नो कंप्लेंट नहीं। कितना अच्छा लगेगा बाबा को जब हम उसके पास रोज मिलने जाएं और किसी के प्रति कोई कंप्लेंट ना करें। हमारे लिए सब ठीक है, जो है वो सब ठीक है, जो है जैसे है सब ठीक है। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा है तो ऐसा बन जाए, ए बी बन जाए, बी सी बन जाए, जो है वो है। ये जो कंप्लेंट का भाव है हमारे अंदर, इसको मिटाना है। शिकायत, कोई शिकायत नहीं आज से, केवल धन्यवाद। धन्यवाद दो हर बात के लिए, उसको धन्यवाद। ये एक मेथड है प्रभु प्रेम को ईश्वर अपने हृदय में भरने की। नहीं तो प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? जिसके प्रति प्रेम उत्पन्न करना है उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, उसकी याद स्वयं को दिलाना, स्मृति, वह स्मरण ही हमको ईश्वरीय प्रेम से भरेगा। और ये ईश्वरीय प्रेम जब भरेगा तब वो जो आसक्ति है, जो राग है, वो स्वतः ही विलीन होगा। तो यहां हमने कुछ ये राग गिनाए। इन सभी रागों को पहले आइडेंटिफाई करना, आकर्षण को, और फिर मुक्त होने की विधि है उनको जान लेना। वास्तव में मुक्त होने का कोई और पुरुषार्थ नहीं है। जैसे अभी ये सेंटर है, यहां पर हमने झाड़ू लगाया और बहुत कचरा आया और हमने कचरे को बाहर फेंक दिया। हम सारे गांव में ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने हमारे सेंटर का कचरा हटा दिया। उसमें क्या बड़ी बात है? जो है ही कचरा, उसको निकाल दो। परंतु पहले पता तो हो कि ये कचरा है, और फिर हम आइडेंटिफाई किया कि ये कचरा है, और फिर अभी नेक्स्ट स्टेप है, इसको निकाल दिया, इसको हटा दिया। इसमें कोई, हमको लगेगा इसमें कोई महानता नहीं है, तो हमारा स्वधर्म है, ये हमारा कर्म है, कर्तव्य है। वैसे ही अंतर में जो भी कचरा है उसको हटा दो, फिर उस त्याग का भी अभिमान नहीं आएगा, वो त्याग भी स्वतः ही हो जाएगा। उसका हम कहीं ढिंडोरा नहीं पीटेंगे, सहज कर्म होगा वो। तो ऐसा सहज पुरुषार्थ हमें करना है। तो वैराग अर्थात राग का अभाव, कौन कौन से राग हमारे जीवन में है पहले उसकी लिस्ट बनाओ, और फिर वैराग लाना है। वैराग लाने की एक दो विधि और है, वो बताकर फिर हम इस क्लास को पूरा करेंगे। सबसे पहले तो वैराग के प्रकार, एक दूसरी बात है, दो प्रकार के वैराग होते हैं, विनाशी और अविनाशी, अल्पकाल का और दीर्घकाल का। उसी को बाबा कहते हैं शमशानी वैराग और सदा का वैराग। शमशानी वैराग अर्थात जब हम शमशान में जाते हैं, चिता को जलता हुआ देखते हैं, उस क्षण के लिए वैराग आ जाता है। ऐसा लगता है सब जीवन व्यर्थ है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, कुछ भी बचने वाला नहीं है, ये जीवन विनाशी है, ये धन संपत्ति सब कुछ विनाशी है। थोड़े समय के लिए होता है, जैसे ही वहां से घर आ जाओ, घर के लोगों को देखो, बिजनेस में जाओ, तो फिर वही राग उत्पन्न होता है। ये एक वैराग, पर वो भी वैराग है। दूसरा है सदाकाल का वैराग, एक उसी को कहते हैं मरकट वैराग। मरकट बंदर को कहा जाता है, बंदर को छोटे से घड़े में चने होते हैं, उसमें वो हाथ डालता है, जैसे हाथ डालता है फंस जाता है, मालिक आता है उसकी पिटाई करता है और बड़ी मुश्किल से छूट के भागता है। उसके बाद वो सोचता है कि ये बहुत खराब है, इसके बाद कभी हाथ नहीं डालूंगा, मार खाना पड़ता है। परंतु कुछ समय के बाद फिर भूल जाता है, फिर हाथ डालता है और फिर ये चालू रहता है क्रिया, थोड़े समय का अल्प काल का वैराग। हमारा है सदा काल का वैराग, अविनाशी वैराग, सच्चा वैराग। तो उसमें एक जो विधि है वैराग उत्पन्न करने की, वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। गीता के महावाक्य है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, व्याधि क्या है, इन पर चिंतन करना। बाबा ने एक जो मार्ग बताया है कि वो सारी दुनिया खत्म होने वाली है, सब विनाश होने वाला है, पर इसका असर ब्राह्मणों पर अभी कम होने लगा है, क्योंकि रोज ही सुनते हैं दुनिया खत्म होने वाली है, विनाश सामने खड़ा है, मौत का बाजार गर्म होगा, होलसेल मौत होगी, कोई भी नहीं बचेगा। कल की मुरली में ही था ना, ना क्रियाकर्म करने वाला भी नहीं बचेगा, डॉक्टर नहीं, पेशेंट नहीं, क्रियाकर्म कुछ नहीं होगा। पर ये बातों का असर थोड़ा कम ही होता है। दूसरा मार्ग जो है, जो बाबा ने कहा है, वो ये मार्ग है, जन्म का चिंतन। जन्म से भी ज्यादा हम कहेंगे जन्म मृत्यु का चिंतन, अपनी ही मृत्यु को देखना। सोचो हम मर गए, अर्थी सजी है और हमको लेके जा रहे हैं, क्या क्या चर्चा कर रहे हैं लोग, उसके तरफ थोड़ा ध्यान दो। हम मर चुके हैं, अर्थी पर हम हैं, और लोग अब चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं। कोई कह रहा है अच्छा था, कोई कहता है अच्छा हुआ गया, बहुत तकलीफ देता था, जरूरी है सब अच्छा ही कहेंगे। कोई कह रहा है, कोई मन ही मन सोच रहे, जो हमारे जूनियर्स थे, जो हमारे अंडर थे, वो कहते थे बहुत तकलीफ देता था, अच्छा ही हुआ गया। और सुनो जरा, आवाजें आ रही है सबको अपनी अपनी आसपास की, वो लोग क्या कह रहे हैं हमारे बारे में। हम सोचते थे ये हमारे परम हितेशी है, और हम जाते ही कह रहे बोझ कम हुआ थोड़ा, अच्छा है, बहुत बात करता था, बहुत बोलता था, ये स्वभाव तो पूछो मत। मधुबन में जब कोई भी शरीर छोड़ते हैं तो वहां भोग में हलवा बनता है। कई बार लोगों को ये पता नहीं रहता है कि कौन गया, जब हलवा देखते हैं तो कहते, फिर पूछते आज कौन गया। वहां पता नहीं चलता है कौन जाता है, कौन, कितने बूढ़े बूढ़े हैं सब, अब पुराने हो गए, तो कोई शरीर छोड़ देते, कोई शांति मन, कोई कहां तो कोई कहां। जब हलवा आता है तब पता चलता है, फिर ढूंढो कहां है, कौन गया, अच्छा ये। तो दुनिया तो चलती रहती है, हम सोच रहे हैं हम जिस स्थान पर बैठे हैं हमारे बगैर वो चल नहीं सकता, वो सेंटर, वो डिपार्टमेंट, हम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑफिस, हमारी ये धारणा है कि मैं हूं इसके लिए सब चल रहा है, मैं हूं इसके लिए सब लोग है। हो सकता है तुम्हारी ही वजह से सेवा रुकी है, जब तुम जाओगे और तुम्हारी जगह कोई दूसरा आएगा, सेवा दो गुना, तीन गुना, दस गुना हो जाएगी, फिर पता चलेगा कि तुम ही बाधा थे। और हम सारा जीवन ही इस भ्रम में जिए कि मैं हूं, मैं अपना तन मन, तन मन धन लगा के एक 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 पाई पाई जोड़कर सब कुछ कर रहा हूं, मेरे ऑफिस में अगर मैं निकल जाऊं तो क्या हो जाएगा सबका। हो सकता है तुम्हारी जगह तुम्हारा दूसरा जो आएगा वो कई गुणवान होगा, कई गुना अच्छा होगा। हमको एक हमारी बारे में बात याद आ रही है, जब हमने ग्लोबल हॉस्पिटल ज्वाइन किया तो हमारे पहले एक डॉक्टर थे वहां पे, डॉक्टर वाधवा, अभी दिल्ली में है, बहुत अच्छा उनका स्वभाव है, तो उनको पर और पढ़ने की इच्छा थी और थोड़ा ज्ञान उनको प्राप्त करना था, क्रिटिकल केयर का उनको थोड़ा कम पता था, आईसीयू और सीरियस पेशेंट्स का। तो 5 साल तो वो रहे, फिर हम आए, तो हम दोनों भी साथ साथ कुछ समय थे, पर वो जब जा रहे थे छोड़कर, जब उन्होंने फिर हमको देखा, उनको लगा कि मैं भी और थोड़ा पढ़ाई करूं और भी थोड़ा मास्टरी ये सब करूं, तो उन्होंने संकल्प किया। फिर उनकी जब जाने की बारी आई तो वो सब पेशेंट्स को यही कहते थे, कितना बड़ा हृदय है उनका, देखो वो जा रहे हैं तो पेशेंट्स कहते थे डॉक्टर साहब आप नहीं जाओ, और लोगों का फेथ बहुत था, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, तो वो सबको कहते थे मेरी जगह जो आ रहे हैं ना वो मेरे से दो गुना अच्छे हैं, ऐसा कहना, ये बहुत बड़ा हृदय चाहिए इसके लिए, जहां हम इंचार्ज है और हम जा रहे हैं, और ये कहना कि मेरी जगह जो आएगा वो मेरे से दो गुना अधिक एक्सपर्ट है, ये बहुत बड़ी चीज हमको लगी उनके बारे में। तो हम बात कर रहे थे मृत्यु की, तो हमारी जगह हो सकता है जो आए हमसे कई गुना अधिक अच्छा हो, और हम सारा जीवन इसी भ्रम में थे कि हम ही बहुत अच्छे सेवादारी है, हमसे अच्छा सेवादारी तो कोई है ही नहीं, इनकी पालना के निमित्त हम ही है, चाहे डिपार्टमेंट, चाहे सेंटर, चाहे घर गृहस्थी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, चाहे मधुबन, कहीं पर भी ऊपर से नीचे तक, यहां पर या संसार में कहीं पर भी हो सकता है हम भ्रम में जी रहे हैं। कई योग्य आत्माएं हैं जो राह में देख रही है, या बाबा सोच रहे हैं ये हटे तो मैं इनको रखूं। मृत्यु का चिंतन, अपनी ही मृत्यु को देखना, फिर है बीमारी, हॉस्पिटल में जाके देखो जरा, जाओ जनरल वार्ड में, गरीब लोग देखो किस हालत में है, कहां है ये देह का सौंदर्य, सोचते हो ना ये बहुत सुंदर है, कहां है, सोचते हो कोई बहुत सुंदर है, कहां है सौंदर्य, बीमार होने के बाद कहां रहता है सौंदर्य, कैसी कैसी बीमारियां है संसार में, बीमारियां आने के बाद कुछ नहीं रहता, हो सकता है हम कितने बड़े भ्रम में जी रहे, सोच रहे ये बहुत सुंदर है या मैं बहुत सुंदर हूं, ये मेरा है ये मेरी है, ये जो भाव है ये भौतिक आउटर ब्यूटी पर निर्भर है, परंतु वास्तविक इस देह में है क्या, इट्स अ बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है इस देह में, ये जो ऊपर का है बस यहीं तक है, ब्यूटी इज बट स्किन डिप, इससे ज्यादा ब्यूटी कुछ नहीं है, और सारी ही चेष्टा है इस देह को देखने की है, संसार में काम वासना का आधार यह देह है, परंतु वास्तविक है क्या यह देह, उसकी वास्तविकता तो देखो, हड्डी मांस मलमूत्र से भरा हुआ देह है ये, और कैसी हालत हो जाती है, जाकर देखो उस जनरल वार्ड में कैसे नीचे सोते हैं लोग, जगह नहीं है, ऐसी ऐसी बीमारियां है, किडनी गई, हार्ट गया, बर्न वार्ड में जाकर देखो, बर्न वार्ड होता है ना, जले हुए, 80% बर्न, 90% बर्न, कैसे चिल्लाते हैं रात रात भर, 20% 30% जितने कम परसेंट हो उतना दर्द ज्यादा होता है, वास्तव में चिल्लाते रहते हैं रात भर, कितने पेन किलर्स दो, चेहरा खराब। हमारे हॉस्पिटल में एक बार एक मरीज को उसके रिलेटिव लाके छोड़ के गए, बाकी बाद में 2 महीने कोई देखने ही नहीं आया, कोई देखने नहीं आया, ये जीवन का सत्य है, कौन चाहता है, कौन चाहेगा कि ऐसी पत्नी हो, वो पति आया मिलके गया डॉक्टर साहब करके बाद में कभी आया ही नहीं, और जो एड्रेस लिखा के गए थे वो भी झूठा, यही वास्तविकता है इस संसार की, जन्म मृत्यु जरा, जरा अर्थात बुढ़ापा, बुढ़ापा भी एक रीति से व्याधि ही है, बूढ़ा होने के बाद क्या हालत हो जाती है लोगों की, कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं, संसार भर में जितने ही वृद्धाश्रम है वहां जाकर देखो, वो घर भी नहीं जाना चाहते वहां पर बूढ़े लोग, क्योंकि घर में तो हालत बहुत खराब है, वो सोचते यही ठीक है, यहां कम से कम ये जो आश्रम वाले देखते तो है, वहां तो कोई नहीं देखता, ना तो बेटा पूछता है ना बेटी पूछती है, पड़े रहते हैं, ये जीवन का सत्य है, और हम इस क्षणिक भोग और के प्रति आसक्त है, इस देह के प्रति, बूढ़े व्यक्ति में कहां सौंदर्य है, देखो जरा, चल नहीं पाता है, दांत गिर जाते हैं, सुनाई नहीं देता, देख नहीं पाते, दूसरों का आधार ले लेके चलना पड़ता है, उसमें भी कितनी बार गिरते हैं, कभी बाथरूम गिरते हैं, कहीं कहां गिरते हैं, हड्डियां फ्रैक्चर होती है, दर्द होता है, कोई मिलने नहीं आता, कोई देखने नहीं आता, पड़े रहते हैं, देखे तो देखे बेड सोर्स पीछे घाव हो जाते हैं, ये जीवन की वास्तविकता है, और हम इस देह में आ सकते हैं, इस देह को देखना चाहते हैं, क्या है इस देह में ऐसा, कुछ भी तो नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनमें क्या क्या दुख है इनका दर्शन करना, जन्म में भी देखो बाबा जो मुरलियों में कहते हैं ये क्या है, गर्भ जेल है, बार बार गर्भ के गड्ढे में जाकर आत्मा गिरती है। फिर जन्म लेती है, फिर गिरती है, फिर जन्म लेती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम। पर फिर भी उसे वैराग नहीं आता है, फिर भी वो एक भ्रम में जीती है, एक अंधकार में गुफा में जैसे जीती है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। वैराग अर्थात प्रकाश, वैराग अर्थात जागृति, वैराग अर्थात स्व के स्वरूप में स्थित हो जाना। मैं जो हूं जैसा हूं वही हूं, यह संसार मिथ्या है। वैराग की एक सर्व महान परिभाषा है, वैराग अर्थात संसार को असार समझना और देह को मिट्टी। इसको लिख लो सभी, वैराग की परिभाषा जो है वो है संसार असार और ये शरीर मिट्टी मात्र है। क्या करते आए अब तक? कल की मुरली अव्यक्तवाणी, कल संडे की अव्यक्तवाणी में बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कही है, मिट्टी को ही देखते आए और मिट्टी से ही खेलते आए अब तक। और किया क्या तुमने? बाप को देते क्या हो तुम? तुम्हारे पास है क्या देने के लिए? सुदामे के सूखे चावल, चावल वो भी सूखे और उसमें भी मिट्टी मिली हुई, ये तुम देते हो बाप को? है क्या तुम्हारे पास देने के लिए? तो जीवन के जो सत्य है, जन्म में दुख, मृत्यु में दुख, व्याधि में, बीमारी में दुख, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। कभी भी कोई भी बीमारी हो सकती है किसी को भी, ऐसा ये कलयुग का प्रभाव है। किसी को एक 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 दो दो तीन तीन, हमने इतने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, मधुबन निवासी कितने सारे देखे हैं, किसी को कैंसर, हमारी आंखों के सामने ही कितनी ब्राह्मण आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, असंख्य आत्माओं ने पिछले 10-15 साल में। कितनी सारी बहनें, सेंटर इंचार्ज, जोन इंचार्ज, मधुबन के पुराने पुराने भाई, कितनी सारी आत्माओं ने हमारे आंखों के सामने शरीर छोड़ा है। कईयों को हमने देखा है शरीर, और बहुतों की 90% की स्थिति बहुत अच्छी थी शरीर छोड़ते समय। कुछ कुछ थे जिनकी आसक्ति जो संसार में थी, उनकी स्थिति तो दयनीय अवस्था थी। हमने दादियों को शरीर छोड़ते देखा है, कुछ कुछ यहां प्रिक करो, यहां प्रिक करो, कुछ नहीं, कोई असर ही नहीं, जैसे इतनी अशरीरी अवस्था। कितनी वैराग युक्त पालू दादी, कितनी सारी दादी, कुंज दादी और हमारी पुष्पाल दादी, सब दादियों ने, शांतामणि दादी, मनोहर इंदिरा दादी, ये सब हमारी आंखों के सामने कितनी दादियों ने शरीर छोड़े, कितनी श्रेष्ठ स्थिति थी। पर उनमें फिर कहने की बात नहीं है, पर दुख की भी बात है। कुछ कुछ आत्माएं ऐसी भी है कि जिन्होंने संसार का चिंतन करते करते शरीर छोड़ा। एक तो ऐसे थे कि कहीं के इंचार्ज, उनको कैंसर था, शरीर में फैला था, परंतु इतना चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था बीमारी के वजह से भी, और हो सकता है कभी कि सारा जीवन सेवा में दे दिया, योग करने का समय ना मिला हो। तो उस आत्मा को एक इच्छा थी, बस मुझे मसाला डोसा खाना है। मसाला डोसा खाया और शरीर छोड़ा। तो कल आज ही कहा ना बाबा ने, जो सारे जीवन भर जो याद करता है वही अंत में याद आता है। देह को याद किया, खेल खलास, आज सुबह की मुरली है। तो बहुत सूक्ष्म गति है हर चीज की। और एक लास्ट उदाहरण देकर इस क्लास को पूरा करूंगा। एक भाई था, बहुत अच्छी सेवा जिसने की, इतनी सेवाएं की, इतनी सेवाएं की कि बात मत पूछो, परंतु योग और ज्ञान के लिए समय कम दिया। अचानक से ऐसी बीमारी आ गई और फिर अभी दुख के संकल्प चलने लगे। ऐसी समर्पित आत्मा है, पर अभी संकल्प चलने लगे कि मैं कितना अकेला पड़ गया हूं, अगर शादी कर लिया होती तो आज मेरी पत्नी और बच्चे होते, ये सब संकल्प आने लगे। कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हुई है, वो साधना, वो वैराग, वो तपस्या, वो ज्ञान कहीं नहीं हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले स्लोगन था, सेवा की अति में नहीं जाओ, स्व पुरुषार्थ और सेवा का बैलेंस रखो। अति में नहीं जाना था, अति सर्वत्र वर्जते, अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज की अति में नहीं जाना है, बैलेंस रखना, सटल बैलेंस। जो बैलेंस रखते हैं उन्हीं की महिमा होती है। जो रस्सी पर चलने वाले हैं उनके लिए टालियां बजती है, रास्ते पर चलने वालों के लिए नहीं, क्योंकि बैलेंस है वहां पर। तो ऐसा बेहद का परम वैराग हमें अपने जीवन में धारण करना है। ओम शांति।